अब अगली जो आयत है ना, आयत नंबर 224, यहां से डायरेक्ट तलाक का मौजू शुरू होता है। कैसे, आइए देखते हैं। वला तजलुल्लाह उर्दतल्ली ऐमानिकुम, अल्लाह को अपनी कस्मों की रुकावट का बहाना ना बनाओ। किस बात का? अंतबर्रू, के तुम नेकी करोगे, यानी नहीं करोगे मुराद है। शुरू का ला इधर भी लग रहा है, यानी अल्लाह को अपनी कस्मों का इस तरह निशाना ना बनाओ के भलाई और परहेजगारी। और तीसरी चीज क्या है? वतुस्लिहु बैनन नास, और लोगों के दरमियान सुलह करना या इसलाह करना छोड़ दोगे। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला है। ला युआखिज़ुकुम अल्लाह बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, और अल्लाह तुमको नहीं पकड़ेगा तुम्हारी बेमकसद, ला यानी कस्मों पर। वला कि युआखिज़ुकुम, लेकिन वो पकड़ेगा तुमको बीमा का सबत कुलूबुकुम, उस बात पे जो तुम्हारे दिल कमाते हैं। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। मैंने कहा कि तल्लाक का मौजू शुरू हुआ, लेकिन यहाँ तो कसम की बात है। तो लिखिए कि तलाक भी कसम की एक इंतहाई कैफियत का नाम है। अल्लाह सुबहान तआला ने तलाक के मौजू को यहां कसम के साथ क्यों शुरू किया? कि तलाक एक बड़ी सख्त किस्म की कसम होती है, हत्ता के जिसके बाद औरत मर्द एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ला तजलुल्लाह उर्दतन, उर्दा किसको कहते हैं? लफ्ज को अगर आप देखें ना, तो उर्दा कहते हैं ढाल को, कोई चीज जो आपको बचा ले। असल में कुछ लोग होते हैं वो नेकी करने से रुक जाते हैं। मसलन मैं आपको छोटी सी एक सिंपल मिसाल दूं, जिससे यह सब कुछ समझ आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने किसी का रिश्ता कराया, नहीं चला, फिर बड़ी बातें सुननी पड़ी आपको। आपने ठीक नहीं ऐसे कराया था, बीच में बात कर दी, खत्म, पीछे हो गए। वो बात में नहीं बनी, अगले ने पकड़ के कहा जी कि आपकी वजह से ये रिश्ता हुआ और ये किया वो किया। अब आपको इतनी बातें सुननी पड़ी, आप कहते हैं अल्लाह की कसम आज के बाद मैं किसी का रिश्ता नहीं कराऊंगी। ये मुराद है, नेकी करने से मत रुको अल्लाह का नाम लेकर। नेकी करने से तो वैसे भी नहीं रुकना, और कसम खा लेना ये तो फिर बहुत ही बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ने पहले तो ये कहा कि बिला मकसद की कसमों से नहीं पकड़ूंगा। अरब लोग तो थे ना, वल्लाही बिल्लाही अफन, ये ऐसे ऐसे लफ्ज बहुत बोलते हैं, वल्ला बिल्ला वल्ला बिल्ला। अब वो सोच नहीं रहे होते, लेकिन वो बोल रहे हैं तकिया कलाम के तौर पर। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी कसम पे पकड़ नहीं होती। यहाँ जो लफ्ज है ना, अल्लाह ताला नहीं तुमको पकड़ेगा, अखज़ा, तो किसी चीज का इहाता करने के मानों में होता है। कहर और गलबे को भी कहते हैं और हलाक करने को भी कह देते हैं। तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला को पता है कि बंदा क्यों करता है। अच्छा, ईमानुकुम के लफ्ज में बहुत सारे लोग गलती करेंगे जब इसका तर्जमा पता चलेगा। ईमान अलिफ पे जेर होगी तो ईमान, अमन से मोमिन मोमिना आपकी बातें, लेकिन यहां क्या है? ईमान, तो ये यमीन की जमा है, यमन यमना यमीन, राइट साइड को कहते हैं। अरब लोग कसम खाते वक्त यूं करते थे, जैसे आप देखिए ये राइट हैंड है ना, तो आप मेरा हाथ तो आपका हाथ, ये शेक हैंड। कसम खाते हुए दोनों फरीक दायां हाथ यूं रखते थे, तो इसको यमीन कहते थे, यानी दाएं हाथ का दाएं से मिलना। तो यहाँ ईमान क्या है? यमीन से। बात वाज़े? तो आप इसको अगर आपको ये लफ्ज आ गया पारे में, और दे दीजिएगा आप प्लीज ये टेस्ट में इनको, ताकि ये गलत लिखें और फिर इनको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ईमान, अब हमने देखना ईमान भी दिया तो हमने ईमान ही लिखना है। तो बहरहाल यहाँ कसम की बात करके फिर कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ता किस चीज़ में? वला कि युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, कसम की बात है बेसिकली। बहुत सारे लोग इस किस्म की बातें करते हैं। तो आप देखिए कि अरबी जुबान में तीन मारूफ किस्में हैं कसम की। एक है लग़्व कसम, ये जिसका आयत के शुरू में जिक्र है, बेकार यमीन लग़्व कहते हैं उसको, बिला वजह बिला इरादा खाई, उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी है यमीन गमूस, कौन सी? झूठी कसम, खाते वक्त भी पता है कि ये गलत खा रहा हूं, ये कबीरा गुना है, कफारा कोई नहीं है इसका, तौबा करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। तीसरी है यमीन मुनक्किदा, मुनक्किद करना, कहते हैं ना निकाह की तरकीब मुनक्किद की जा रही है, वही लफ्ज है। मुनक्किदा क्या है? कि आपने कसम खाई थी कि मैं ये काम करूंगी, पूरी नहीं कर सके, तो उसका कफारा इंशाल्लाह सूरत मायदा में आप पढ़ेंगे सातवें पारे के शुरू में, 3 दिन के मुसलसल रोजे, या 10 मिसकीनों को खाना खिलाना, या 10 को कपड़े पहनाना, या 1 गुलाम को आजाद कराना है। और कसम खाई हो तो तोड़ दें। कल हमारी एक अपनी स्टूडेंट है तो उसने मुझे कहा कि मेरी अम्मी बीमार थी तो मैंने 200 नफल और 2 कुराने पाक पढ़ने और 2 महीने के रोजे रखने की मन्नत मानी थी कि मेरी अम्मी ठीक हो जाए तो मैं ये करूंगी। तब तो अम्मी तो फौत हो गई है, तब तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा ये आपने क्यों किया। कहती हमारे कल्चर में रिवाज है, हम अपने ऊपर इस तरह जब कोई काम कराना हो अल्लाह से कराते। मैंने कहा आप, और हैं भी आखिरी दिनों की माशाल्लाह प्रेग्नेंट, मैंने कहा आप ये सब कैसे करेंगी। फिर मैंने उनको बताया क्योंकि हदीस में आता है कि कफारतुन नजरी कफारतुल कसम, नजरें मान कर पूरी ना कर सकें या कसम खा कर पूरी ना करें तो उसका कफारा क्या है कि फिर आप उसको पूरा कर दें। अब ये बात समझ आ गई, सिंपल है। इधर असल में अल्लाह ताला ने आपको कसम की डिटेल्स नहीं देनी थी, सिर्फ आपका मेरा टॉपिक जा रहा है तलाक की तरफ। तब आयत नंबर 246 में तलाक की सबसे हल्की किस्म लिखिए, हर आयत के साथ टॉपिक लिखिए। मैं कहती हूँ एक दफा अगर आपने मेरे साथ तलाक का मौजू पूरा पढ़ लिया ना तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारे कल्चर में तलाक के मौजू को इतना ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है कि शायद ही कोई हफ्ता ऐसा ना गुजरता हो कि मेरे अपने फोन में कोई तलाक का मौजू मसला लेकर लोग ना हाजिर हों। हालांकि माशाल्लाह दुनिया में इतने आलिम मौजूद हैं, मैं सोचती हूँ कितने लोग हैं जो आलिमों के पास जा जा के ऐसी बातें पूछते होंगे। ये इतना बड़ा इशू बन चुका है, तो थोड़ा सा मैं आपकी मदद करूंगी क्योंकि ये मौजू मेरा भी फेवरेट टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं ये नहीं कहती कि मैं इसकी स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे इसकी बारीकियों की समझ है अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ अब पहली किस्म तलाक की सबसे हल्की किस्म, इसको कहते हैं ईला, अलिफ या लाम अलिफ, ईला उसका जिक्र है। आइए पढ़ते हैं। लिल्लज़ीना यूलून मिन निसाइहिम, जो लोग कसम खा लेते हैं अपनी बीवियों से, क्या करें उनकी बीवियां, तरबुसु अरबाती अशहर, इंतजार करें 4 महीने, फ़इन फाउ फिर अगर वो शौहर पलट आए यानी रजू कर लें, फ़इन अल्लाह गफूर रहीम तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। ठीक है, यानी शौहर को 4 माह दे दिए, आ गया तो आ गया, नहीं आता तो फिर अगली बात वाइन अजमत तलाक, फिर अगर वो पक्का इरादा कर ले, अजम पुख्ता इरादा, इरादे से ऊपर की कैफियत होती है अजम, तो क्या होगा, फइनल्लाह समीउन अलीम तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिए शौहर बीवी का ताल्लुक एक जज्बाती ताल्लुक भी है। इंसान की तबीयत में गुस्सा हो और जल्दबाज हो तो बाज़ दफ़ा इस ताल्लुक़ को बात बे बात तोड़ने लगता है। अरब लोग भी थे और आज भी ऐसा हो सकता है, यानी ये एक मुस्तकिल चीज़ थी, अपनी बीवी से नाराज़ होते और फिर कहते मैं तुमसे ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। यानी आप थोड़ा सा इसको समझें, बिल्कुल लिख सकें लिखें ना सकें लिखें, बस समझेंगे तो फिर आप इस बात को आगे करने के इंशाल्लाह काबिल होंगे। अब करते क्या थे कि बीवी से नाराज़ हुआ एक मर्द और उसको गालियां दी, 2-4 जो भी कोई दे सकता अपने माशाल्लाह स्टेटस के मुताबिक, अपना स्टैंडर्ड है उसका जो। फिर उसके बाद बीवी को कहता खबरदार मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। अब बीवी अलग वो अलग रहती, वो बीवी नाम से लोगों को देखने में वो बीवी लगती पर बेवाओं से भी बेचारी बदतर थी। महीनों सालों मर्द अपनी बीवियों के पास नहीं आते थे, जब दिल चाहा अपनी ख्वाहिश कोई हुई ख्वाहिश पूरी कर ली, फिर कह दिया नहीं। अब औरतें साल हर साल नाम की बीवी लेकिन असल बेवा बन के रहती। इस्लाम ने इस एक आयत के थ्रू इस ज्यादती को जो औरतों पे हो रही थी तोड़ दिया। अब आप देखिए ना, शरीफ सीधी सी औरत है, पाकिस्तान से आ गई इधर शादी होके, मिसाल तो अब इधर ही की देंगे ना, कहीं भी हो सकता है ये मामला। अब वो मर्द ला के छोड़ देता है, उसके लिए और बड़ी है बाहर, उसको तो ये अच्छी भी नहीं लगी। अच्छा अब माँ बाप का चुप कर, हमारी इज्जत रखना, मेरे भाई की बेटी है, अब मैं आपकी पंजाबी टोन में बोल रही हूँ आप लोग समझेंगे। यानी ये घर घर की कहानी है कि शौहर शादियां करके बीवियों को ले तो आते हैं चाहे किसी थ्रेट पे या किसी और शौक में, बट या तो अपना मिजाज बिगड़ा हुआ था, कहीं और दिल लगा हुआ था, या वैसे ही कोई बात थी, तो साल हर साल बीवियों को लटकाते हैं। इस्लाम कहता है कि एक औरत को बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम एक मर्द कसम खाकर या ये अनाउंस करके कि मैं तेरे साथ ताल्लुक नहीं रख सकता, उसकी हद 4 महीने। देखिए एक है इफाम व तफहीम, साथ रहते हुए बंदा ताल्लुक ना रखे, बीमार है नहीं रहे, मर्द किसी मजबूरी में पढ़ने चले गए बाहर 6 महीने लगाए, मतलब कोई जॉब ढूंढने चले गए, सिंपल थिंग। ये नहीं कि अभी इस चीज को हम ले ले कि शायद बास लोगों ने मुझसे सवाल किया कि अच्छा फिर रिश्ता टूट जाता है, शादी टूट जाती है अगर मर्द बीवी के पास 4 माह तक ना आए, तो ऐसा नहीं है। ये अनाउंस्ड होता था और वो लटकाते थे, कहते थे ना तुझे रखेंगे ना छोड़ेंगे। अब औरतों पे जुल्म था, जाहिर है उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती थी, तो अल्लाह ने औरत को हुक्म क्या दिया, तरबुस। तरबुस रबीसा से, इसको मैं आगे जाके वाजे करूंगी, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है, इंतजार के लिए जाता है। कहा कि बीवियां इंतजार करें कितना, 4 अशहर 4 महीने। देखिए अरबी जुबान में शहर कहते हैं महीने को, ये शहर नहीं शहर, इसकी दो जमे होती हैं, एक अशहर ब्रोकन है, ये थोड़े महीनों के लिए आती है 3-4 के लिए, लेकिन इसकी दूसरी जमा होती है शुहूर, वो आती है 12 महीनों के लिए, 3-4 से ज्यादा जी जिसको समझ आती है लिख ले, नहीं आती तो छोड़ दे, लेकिन 4 माह है। अब क्या होगा, बीवी गिनेगी ये आज मेरे पास आया था या इसने आज कसम खाई थी, इसने अब मुझे मेरा बीवी होने का हक नहीं दिया, 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने घर में रहेगी। 4 माह गुजर गए, फाइन फाओ मर्द को आना पड़ेगा, अपनी कसम तोड़े, इंसान बने, बीवी को बीवी समझे, उसके साथ ताल्लुक रखे, फाइन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है इट्स फाइन, हो गई बात। बट अगर वो कहता है नहीं आता या नहीं रखता ताल्लुक तेरे साथ, तो वही नाजम उत्तला, फिर औरत उससे मांगेगी, फिर औरत कोर्ट में जाएगी और औरत अदालत से कहेगी कि तुम मुझे इससे तलाक दिला दो, तो फाइन अल्लाह समीउन अलीम। देखिए उधर गफूर रहीम है, इधर समीउन अलीम है। इस सारे अमल को ईला कहते हैं, अलिफ ये लाम। और आप कहते हैं कि नबी सल्लम ने एक दफा अपनी बीवियों से किया था, सूरत अहज़ाब में आप पढ़ेंगे, 1 महीने का लफ्ज आपने बोला था, बीवियों की तरबियत के लिए था बेसिकली, कि उन्होंने दूसरी औरतों की देखा देखी जायज मुतालबा किया कि अब हमें भी तो कुछ खाना पानी अच्छा मिले, थक गए हैं अब तो, खैबर भी फतेह हो गया तो कुछ हमारा भी जरा घर अच्छा बने। तो अल्लाह के नबी का मेयार वो नहीं था जो आम मर्दों का होता है, आपका मेयार बहुत ऊंचा था, तो आपने कहा ठीक है फिर जाओ मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम किसी और से शादी करके दुनिया के मजे करो, ये भी बड़े नसीब की बात है किसी को नेक मर्द मिल जाए। खैर बहर हाल मत 1 महीने का कहकर चले गए। जब 29 दिन हुए तो आप नीचे उतर आए, तो सहाबा में से किसी ने याद दिला कि अल्लाह के नबी ठहरे अभी आज तो 29 दिन हुए, आपने तो 1 माह का कहा था, यानी मुराद ये था कि आपकी कसम ना टूट जाए फिर कफारा देना पड़ेगा, तो कहा क्या कभी महीना 29 दिन का नहीं होता, यानी मैं 29 दिन के बाद आ जाऊंगा। तो मतलब ये है कि ये एक आम सी कैफियत है, इसको एक इंसान यानी समझे। और आप देखिए ये औरत का कितना बड़ा हक है, मैं कहती हूँ जहां माँ बाप भी नहीं बोल सकते वहां रब बोलता है औरतों के लिए। इसीलिए अगली आयत में अल्लाह ताला ने बस हिंट है, मैं इंशाल्लाह कल आपको पूरा A to Z तलाक का तरीका और बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि हर बच्ची को बताना चाहिए। लोग कहते हैं शादीशुदा को बताना चाहिए, मैं कहती हूँ जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई उनको बता होना चाहिए। और वो क्या है, आखिरी आयत है हमारे आज के सबक की, बस ये खुलासे में आएगी क्योंकि असल आयत जो है वो इंशाल्लाह अगला सबक हमारा पूरे ही तलाक पे होगा इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते वल मुतल्लकातु, और तलाक याफ्ता औरतें, अल मुतल्लकातुन की जमा मुतल्लकात यानी तलाक याफ्ता औरतें, या तो रब्बसना इंतजार करें, इसका आपको कल मैं रबस का मानी समझाऊंगी, तो आप देखेंगे कितना अप्रोप्रिएट लफ्ज है इधर अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो इंतजार करें बी अनफुसी हिन्ना अपने नफ्सों के साथ, कितनी देर, सलासता कुरू 3 महीने। कुरू लफ्ज को समझ लीजिए, डिटेल कल होंगी, पीरियड का पहला दिन या आखिरी दिन, बस ये 2 लफ्ज लिख लें। कुरू कुछ कहते हैं जिस दिन पीरियड शुरू हो उससे लेकर अगले पीरियड के शुरू होने तक, और बात कहते नहीं पीरियड के खत्म होने का आखिरी दिन, तो वो 6-7 दिन का घपला है, वो आपको इंशाल्लाह इद्दत के मसाइल में समझ आएगा। बस हम अपनी आसानी के लिए इसको 3 महीने कह देते हैं, लेकिन मुराद इसमें 3 हैज है, यानी औरतें इंतजार करें। किस बात का इंतजार करें, ये असल में अब तलाक की इद्दत चल रही है, अब क्या इंतजार करें, यानी औरतें घर से नहीं निकल सकती, क्या मेकअप नहीं कर सकती, तैयार नहीं हो सकती, ये सब कुछ नहीं है। बेवगी की इद्दत और तलाक की इद्दत में बहुत फर्क है, वो सारे फर्क हमारे कल या उससे नेक्स्ट लेसन में आएंगे, इद्दत के मसाइल इंशाल्लाह आप देखेंगे। यहां इतनी बात समझ लीजिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने तलाक देने का खूबसूरत तरीका सिखा दिया कि जिन औरतों को तलाक दे दी है अब वो 3 हैज तक रोकें, तो किस चीज से रुकेंगी? लिखिए निकाह सानी, दूसरा निकाह नहीं हो सकता, बस दैट्स इट। तलाक की इद्दत में ना घर से निकलने की कोई पाबंदी है, ना कपड़े अच्छे पहनने की, बल्कि ऐसी औरत शादीशुदा औरत कहलाती है जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाएगी। जब इद्दत पूरी हो जाएगी और अगर अल्लाह ना करे इस दौरान मर्द फौत हो जाता है तो बीवी उसका तरका पाएगी, वो उसकी बिल्कुल एक बीवी के हैसियत से उसको पेश करेंगे। तो बहरहाल 3 महीने तक इंतजार करेगी, वला यहिल्लु लहुन्ना, और नहीं है हलाल उन औरतों के लिए क्या यक्तुम नमा खलकल्लाहु बिअरहामिहिन, कि वो छुपाएं जो इनके रहमों में अल्लाह ने पैदा किया है। वो क्या? प्रेगनेंसी। यानी एक औरत को तलाक मिली, हालांकि प्रेगनेंसी में तलाक नहीं देनी चाहिए लेकिन दे देता कोई, पता नहीं थे या गुस्से में। ना तलाक गुस्से में देनी चाहिए, ना जज्बात में देनी चाहिए, ना जल्दी में देनी चाहिए, लेकिन दे दी। पता चला औरत जो है वो प्रेग्नेंट है। आम तौर पे तलाक की इद्दत 3 महीने सलासा करूँ, लेकिन अगर औरत प्रेग्नेंट है तो वजह हमल 9 महीने की भी इद्दत हो सकती है, और अगर पहले से प्रेग्नेंट थी तो मे बी 2 दिन बाद बच्चा हो जाए तो वो फारिग हो जाएगी। समझ आ रही कितना अल्लाह का प्यार है? शर्त के इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो वाकई अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखती हैं, यानी औरत अपनी प्रेगनेंसी नहीं छुपा सकती। फिर वबऊलतुहुन्ना हक बिरद्दिहिन्ना, और इनके अपने ही शौहर ज्यादा हकदार हैं इस बात के कि उनको लौटा ले। फी जालिका, इसमें लिखिए फी जालिका, जालिका क्या है? इस इद्दत के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान अगर पहले ही शौहर बीच में उसको रोक ले तो बहुत अच्छी बात है, उसका ज्यादा हक है, उसको कोई रोक नहीं सकता। शर्त एक है, इन अरादु इस्लाहन, अगर वो इस्लाह की नियत रखे। इसको कहते हैं रुजू। अब एक टर्म लिखिए रुजू। मर्द ने औरत को तलाक दी, अभी 3 महीने के दरमियान का ही वक्त चल रहा था। एनी टाइम एनी वेयर मर्द कहता है मैं अपनी तलाक वापस लेता हूं, और तुम मेरी बीवी हो, कोई मर्द को रोक नहीं सकता, बीवी के पास भी हक नहीं है, नहीं अब मैं आपकी बीवी नहीं हूं, घर वालों का तो हक कभी चला ही नहीं है, तो बीवी के साथ मर देगा, इसको रजू कहते हैं, मर्दों को पूरा हक है। वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ, और औरतों के लिए इसी तरह हकूक हैं जिस तरह इन पर जिम्मेदारियां हैं दस्तूर के मुताबिक। वलिर्रिजाली अलैहिन्न दरजा, हाँ लेकिन मर्द को बस एक दर्जा हासिल है। असल में आज की औरत ने इसे एक दर्जे को एक्सेप्ट नहीं किया। अल्लाह ताला कहते हैं औरत और मर्द दोनों के हकूक हैं एक दूसरे पे, बस मर्द का एक है। मैंने कल भी किसी से जिक्र किया था शायद इस बारे में कि 49 और 51, लिखें जरा। आप कहते हैं 50-50, आज वेस्ट ने जो गुलगुला छेड़ा ना इक्वालिटी का, औरत मर्द बराबर हैं, मर्द औरत गाड़ी के टायर हैं पहिए हैं, गलत कहते हैं। आप 50-50 नहीं माने, 51 और 49, औरत 49 है, मर्द 51 है। क्यों? ये क्या दर्जा है मर्द का? लिखिए ये क्या दर्जा है, मर्द तलाक दे सकता है, औरत तलाक दे नहीं सकती, मांग सकती है, उसका जिक्र आगे आएगा, उसको खुला कहते हैं। बात वाजे, मर्द तलाक दे सकता है, ये अपर हैंड है। वजह? क्योंकि मर्द ने ही तो निकाह पे सारा खर्चा किया था, मर्द आपका हक महर लेकर आया, मर्द ने आपके लिए घर बनाया, मर्द ने आपके बैठने रहने की जगह हमवार की। अब औरत जाके कहती है मैं तुम्हें तलाक देती हूं, अब ये लोग कहते हैं ये बड़ा जुल्म है, औरत को क्यों नहीं हक दिया तलाक देने का? जरा नोट कीजिए इस बात को, अगर मर्द की तरह औरत को भी हक दिया होता तलाक देने का तो अब जितनी तलाकें हो रही हैं सर डबल नहीं 3 गुना होनी थी, क्योंकि औरतें जज्बाती, एक तो हर डिलीवरी बेड पे हर औरत अपने शौहर को तलाक दे देनी थी, आज के बाद मैं तुम्हें तलाक देती हूं। सास लड़ी, ऑफिस में मियां को जाना था, मैसेज आई डाइवोर्स यू, नंद ने बाल खींचे, मियां को तलाक दी। वल्ला ही अल्लाह ने औरत को यह तलाक ना देने का इख्तियार देकर कितने टूटने वाले घरों को बचाया। औरत में ना जज्बात बहुत होते हैं, इमोशनल होती है, रोती है, नाक भी साफ करती है साथ, फिर आंखों में भी पानी, रोती धोती और फिर कहती है मैं कहूंगी कुछ नहीं पर मैं कहती नहीं और ये नहीं वो नहीं, तो मर्द को अल्लाह ताला ने इख्तियार क्यों दिया? देखिए ना, मर्द इतने पैसे लगाता है। इस्लाम में लोग कहते हैं ना, हाय बेटी की शादी करनी है। अक्सर आपको भी पाकिस्तान से मैसेज आते होंगे, फुलां की बेटी की शादी करनी है, कुछ पैसे जमा करें। मैसेज क्या आना चाहिए? फुलां के बेटे की शादी करनी है, कुछ मदद करो, क्योंकि उस बेचारे ने हक मेहर बनाना, उसके कमरा लेना, उसके लिए बैठने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, जो उसकी हैसियत है। ये तो बड़ी बेगैरती की बात है कि बीवी साथ कुर्सी मेज पलंग लेकर जाएगी तो मियाँ साहब उसको आने देंगे? ये तो एक अलग इशू है जहेज का। इस्लाम में इसका कोई भी तसव्वुर नहीं है। तो बहरहाल यहाँ ये करके कह दिया, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाले हैं। आज इससे कायद को ना समझ कर लोगों ने औरतों और मर्दों के बहुत ज़्यादा मसले खोले। कल इंशाल्लाह सबक के शुरू में इस मौजू को अपने लफ्ज़ों में करके तो मैं अगली आयतों के साथ आपको लेकर चलूंगी। और यकीन करें कि ये इतना आसान टॉपिक है जिसको लोग मुश्किल कहते हैं। एक जुमला सिर्फ बोल देती हूँ ताकि आज वाली आयतों का भी एक कम अज़ कम आपको एक जुमला तो कल तक याद रह जाए। और वो क्या है, हमारे जहनों में ये है कि तीन तलाकें होती हैं और तीन दफा दें तो तलाक पूरी होती है। ये कॉन्सेप्ट है ना, बिग क्रॉस। एक तलाक का पूरा साइकिल है। हाँ, उस साइकिल को आप तीन दफा दोहराने का हक रखते हैं। बस इतना सबक पढ़ के आइएगा, बाकी कल बताऊंगी। समझ नहीं आई मुझे पता है, आपके चेहरों से लग रहा है। बाद लोग कहते हैं तीन दफा जब तक कोई तलाक नहीं दे देगा तलाक नहीं होगी। गलत है ये। एक दफा देने से पूरा राउंड सर्कल बनाए, तलाक एक पूरा महीना इस तरह घूमती है, तलाक हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ने उसको तीन दफा में रखा है। इंशाल्लाह कल की आयत के शुरू में इस पे बहुत सारी बात होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अमल की तौफीक दे और हमारे जहनों की उलझनों को खोल दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.